एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र आई की मदद से तैयार किया गया है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे म्यूरियल स्पार्क के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी पर।
जी, और ये उपन्यास सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं। ये प्रभाव, शक्ति और आदर्शवाद के क्या परिणाम हो सकते हैं, उसकी एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक पड़ताल है।
और कहानी का जो समय है 1930 का दशक, एडिनबरा, वो भी बहुत दिलचस्प है। मतलब यूरोप में राजनीतिक उथल पुथल का दौर था।
सही कहा। तो चलिए कहानी की दुनिया में उतरते हैं। ये शुरू होती है मार्शिया ब्लेन स्कूल फॉर गर्ल्स से। कैसा स्कूल है ये?
ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही परंपरावादी, थोड़ी संकीर्ण सोच वाला स्कूल है, और वहीं पर हमारी मुख्य पात्र हैं मिस जीन ब्रॉडी।
मिस जीन ब्रॉडी, जो मानती है कि वो अपनी जिंदगी के प्राइम में है।
अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में, और वो सिर्फ मानती नहीं, इसका ऐलान करती हैं।
और वो अपनी क्लास में कुछ लड़कियों को चुनती हैं, एक खास ग्रुप।
जी, उनका ब्रॉडी सेट। 6 लड़कियां हैं 10 साल की, सैंडी, रोज, मैरी, जेनी, मोनिका और यूनिस।
और वो उनसे वादा करती हैं कि वो उन्हें क्रेम दला क्रेम बनाएंगी, मतलब सबसे बेहतर।
बिल्कुल, लेकिन उनका बेहतर बनाने का तरीका स्कूल से बिल्कुल अलग है। वो स्कूल के पाठ्यक्रम को तो तुच्छ समझती हैं।
तो वो पढ़ाती क्या है?
वो उन्हें अपनी यात्राओं के बारे में बताती हैं, अपने प्रेम प्रसंगों के बारे में, कला के बारे में,
और फासीवादी नेताओं के बारे में भी, है ना?
हाँ, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वो मुसोलिनी और फ्रेंको जैसे नेताओं की प्रशंसा करती हैं।
ये सिर्फ एक राजनैतिक विचार है या उनके अपने स्वभाव का कोई आईना है?
क्या खूब सवाल पूछा। ये राजनीति से कहीं ज्यादा है, ये उनके व्यक्तित्व का ही प्रतिबिंब है।
मतलब
देखिए, फांसीवाद का मूल क्या है? एक करिश्माई नेता जिसके प्रति पूरी वफादारी हो,
एक चुनिंदा एलीट समूह,
जो बाकियों से बेहतर हो,
हाँ,
और नियमों को तोड़कर एक जुनून के पीछे भागना। अब मिस ब्रॉडी के क्लासरूम को देखिए।
अच्छा, तो वो खुद नेता है, उनका ब्रॉडी सेट, वो एलीट समूह,
और वो लड़कियों को लगातार स्कूल के नियम तोड़ने के लिए उकसाती हैं। उनका क्लासरूम असल में एक छोटा सा सत्तावादी राज्य है।
वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इन लड़कियों में, इस सेट में सबसे अहम कौन है? जिक्र बार बार सैंडी स्ट्रेंजर का आता है।
सैंडी कहानी की असली नायिका है। वो बाकियों की तरह मिस ब्रॉडी से प्रभावित तो है, लेकिन उसके अंदर एक आलोचक भी जिंदा है।
वो चीजों को गहराई से देखती है।
बिल्कुल, वो चुपचाप सब कुछ देखती है, समझती है और मन ही मन सवाल करती है। मिस ब्रॉडी उसे अपनी सबसे बड़ी राजदार बनाना चाहती हैं।
लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि सैंडी की नजरें उनके आर पार देख सकती हैं।
सही कहा। और फिर है रोज स्टैनली, अपनी सेक्स अपील के लिए जानी जाती है।
हाँ, मिस ब्रॉडी का उसके लिए एक बहुत ही अजीब सा प्लान था। ये एक टीचर के लिए सोचना भी बहुत अजीब है।
बहुत अजीब, और यहीं से मिस ब्रॉडी का असली थोड़ा भयावह रूप सामने आने लगता है।
उनके जीवन के दो पुरुषों के इर्द गिर्द, टेडी लॉयड और गॉर्डन लूथर।
जी, टेडी लॉयड शादीशुदा आर्ट टीचर जिनसे वो प्यार करती थी, एक अधूरा इश्क, और गॉर्डन लूथर संगीत टीचर जिनके साथ उनका एक साधारण सा रिश्ता था।
तो वो रोज का इस्तेमाल कैसे करना चाहती थी?
वो अपनी अधूरी इच्छाओं को अपनी छात्राओं के जरिए जीना चाहती थी। वो रोज को तैयार करती हैं कि वो बड़ी होकर टेडी लॉयड की प्रेमिका और मॉडल बने,
ताकि वो रोज के जरिए टेडी के करीब रह सके।
हाँ, ये मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का एक बहुत ही घिनौना स्तर है।
और इस सब में बेचारी मैरी मैकग्रेगर का क्या होता है? ऐसा लगता है कि वो हमेशा उपेक्षा का पात्र बनती है।
मैरी का किरदार बहुत दुखद है। वो थोड़ी भोली है, अनाड़ी है, और मिस ब्रॉडी उसे लगातार नीचा दिखाती हैं।
वो क्या दर्शाती है?
वो मिस ब्रॉडी के आदर्शवाद की क्रूरता को दर्शाती है, कि अगर आप उनके मानकों पर खरे नहीं उतरते तो उनके एलीट समूह में आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप कुछ भी नहीं है।
एक और बात जो इस कहानी को खास बनाती है, वो है इसे कहने का तरीका।
हाँ, म्यूरियल स्पार्क की कथा शैली,
वो सीधी रेखा में नहीं चलती।
वो हमें भविष्य की घटनाएं यानी फ्लैश फॉरवर्ड्स पहले ही बता देती हैं।
जी, हमें शुरुआत में ही पता चल जाता है कि लड़कियों में से ही कोई एक मिस ब्रॉडी को धोखा देगा।
तो फिर सस्पेंस कहाँ रहा, अगर हमें पता है कि क्या होगा?
तो सवाल ये बन जाता है कि क्यों और कैसे होगा। ये हमें जासूस से एक मनोवैज्ञानिक बना देता है। हम किरदारों के दिमाग में झांकने लगते हैं।
समझ गई।
तो कहानी आगे बढ़ती है, लड़कियां बड़ी हो रही हैं, और हेड मिस्ट्रेस मिस मके लगातार मिस ब्रॉडी को निकालने की कोशिश में है।
हाँ, लेकिन उन्हें कोई ठोस वजह नहीं मिलती और तब तक मिस ब्रॉडी का प्रभाव और गहरा होता जाता है।
और फिर आता है कहानी का निर्णायक मोड़, जब सैंडी, जो अब तक एक खामोश दर्शक थी,
वो एक हैरान करने वाला कदम उठाती है।
क्या करती है वो?
जब उसे मिस ब्रॉडी का ये प्रॉक्सी वाला खेल समझ आता है तो वो रोज की जगह खुद टेडी लॉयड के साथ रिश्ता बना लेती है।
क्यों? वो क्या जानना चाहती थी?
शायद वो मिस ब्रॉडी के इस जुनून की गहराई को समझना चाहती थी और उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है।
क्या थी वो सच्चाई?
उसे पता चलता है कि टेडी लॉयड का जुनून आज भी सिर्फ और सिर्फ मिस ब्रॉडी है। वो किसी भी लड़की का पोर्ट्रेट बनाए,
उसमें झलक मिस ब्रॉडी की ही दिखते हैं।
बिल्कुल, शक्ल किसी की भी हो, आत्मा मिस ब्रॉडी की होती है। और ये सैंडी के मुंह भंग की शुरुआत थी। उसे एहसास हुआ कि वो सब मिस ब्रॉडी की कठपुतलियां हैं।
लेकिन ये विश्वासघात की असली वजह नहीं थी, है ना?
नहीं, असली वजह एक और भी दुखद घटना थी।
जॉयस एमिली नाम की एक लड़की,
हाँ, एक नई छात्रा जो ब्रॉडी सेट में शामिल होने के लिए बेताब थी। मिस ब्रॉडी उसे स्पेन जाकर फ्रैंको की सेना के लिए लड़ने को उकसाती हैं।
एक छात्रा को गृह युद्ध में लड़ने के लिए,
उनके लिए ये एक महान रोमानी विचार था। लेकिन हकीकत में स्पेन जाते हुए ट्रेन पर हमला होता है और जॉयस की मौत हो जाती है।
हे भगवान, ये तो अपराध है।
यही वो आखिरी तिनका था जिसने सैंडी को तोड़ दिया।
बिल्कुल, सैंडी को एहसास होता है कि ये कोई खेल नहीं है, मिस ब्रॉडी के शब्दों के घातक परिणाम है। वो लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही हैं।
और तब वो फैसला करती है जो कहानी का आधार है।
जी, वो हेडमिस्ट्रेस मिस मैके के पास जाती है और उन्हें मिस ब्रॉडी की फांसीवादी राजनीति के बारे में सब बता देती है।
और इसी आधार पे मिस ब्रॉडी को स्कूल से निकाल दिया जाता है।
हाँ, तो ये था वो विश्वासघात।
और अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो ये उपन्यास हमारे सामने रखता है। क्या सैंडी का ये काम सही था? ये एक बहुत ही जटिल नैतिक सवाल है और उपन्यास इसका कोई आसान जवाब नहीं देता।
एक तरफ उसने एक खतरनाक प्रभाव को रोका, पर दूसरी तरफ उसने उस गुरु को धोखा दिया जिसने उसे दुनिया देखना सिखाया था।
सैंडी खुद जीवन भर इस बोझ के साथ जीती है। बाद में जब वो एक नन बन जाती है तो वो एक बहुत गहरी बात कहती है।
इट्स ओनली पॉसिबल टू बिट्रे व्हेन लॉयल्टी इज ड्यू।
हाँ, विश्वासघात केवल वहीं संभव है जहां वफादारी का हक हो।
इसका मतलब है कि उसके अनुसार मिस ब्रॉडी ने अपनी हरकतों से वफादारी का वो हक खो दिया था।
बिल्कुल, उन्होंने अपनी छात्राओं को प्रेरित करने की जगह उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था।
और कहानी के अंत में मिस ब्रॉडी को कभी पता नहीं चलता कि उन्हें धोखा किसने दिया।
कभी नहीं, उन्हें सैंडी पर तो कभी शक ही नहीं होता जो उनकी सबसे करीबी थी। वो कैंसर से मर जाती हैं
और सैंडी वो ताउम्र मिस ब्रॉडी के प्रभाव से जूझती रहती है। वो उन्हें रोक तो देती है पर उनसे कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाती।
सही।
को अंत में ये उपन्यास हमें सिखाता है कि करिश्माई व्यक्तित्व और उनके आदर्शवाद का आकर्षण कितना खतरनाक हो सकता है,
और ये भी कि किसी के प्रभाव से बाहर निकलने और अपनी पहचान बनाने की प्रक्रिया कितनी जटिल और पीड़ादायक हो सकती है। सैंडी ने मिस ब्रॉडी को हरा दिया, लेकिन इस जीत की कीमत उसे अपनी पूरी जिंदगी चुकानी पड़ी।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।